हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के इस पवित्र महान ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमने ये पढ़ा कि भगवान ने आखिर ये भौतिक सृष्टि का निर्माण क्यों किया, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का निर्माण किस प्रकार किया, और इसके विषय में हमने पढ़ा कि भगवान जब गोलोक वृंदावन धाम में होते हैं और उन्हें लीला करने की इच्छा होती है तो अपने अंदर से पहले चतुर्व्यूह को 3 दफा निकालते हैं और 12 जब हो जाते हैं तो उसमें से महाशंकरषण, और महाशंकरषण से निकलते हैं कारण दक्षाय विष्णु। कारण दक्षाय विष्णु के सांस लेने से करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जो है वो निकल रहे होते हैं, और बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, बहुत बहुत संख्या में ब्रह्मांड होते हैं, असंख्य कहता है शास्त्र, यानी कि काउंटलेस होते हैं। और अब जो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं। देखो, हर ब्रह्मांड का एक अलग अलग हिस्ट्री है, उसका एक अलग क्षीरोदक्षाय विष्णु होता है, उसका एक अलग ब्रह्मा होता है। मैंने कल ब्रह्मा जी की स्टोरी सुनाई थी ना, कि कोई जैसे हमारे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा जी है उसके 4 सर होते हैं, क्योंकि हमारा ये ब्रह्मांड जो है बहुत छोटा है, सिर्फ 14 लोक हैं इसके, और 4 सर काफी है उसके डिसीजन लेने के लिए, उनको पैदा करने के लिए 4 सर वाला ब्रह्मा काफी है। लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं, जैसे किसी के 10 सर, किसी के 20, किसी के 50, किसी के 1000, किसी के 10,000, बहुत बहुत ब्रह्मांड जो है ना निकलते हैं। और हम लेकिन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ब्रह्मांडों के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्र में ज्यादातर जो है वो हमारे ही ब्रह्मांड की डिटेल दी हुई है। और अलग अलग ब्रह्मांडों के विषय में जानकर भी क्या हम लोगों को हमारे ब्रह्मांड के विषय में जान ले तो बड़ी बात है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड का हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले भगवान के जो महाशंकरषण है उसमें से कारण दक्षाय विष्णु निकलते हैं, और जो उन्होंने जब सांस ली तो हमारा ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ है, और भी बहुत सारे हुए हैं लेकिन हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि क्षीर सागर में शयन करते हैं उनकी उत्पत्ति होती है, और क्षीर सागर के ऊपर जो विष्णु भगवान है उनका कार्य क्या होता है, वो लेटते हैं क्षीर सागर पे और उनकी नाव में से एक कमल का फूल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, और इस डंडी पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोक होते हैं, सेंटर में पृथ्वी, उसके ऊपर भवलोक, महालोक, सिद्धलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक लास्ट में, और नीचे अगर उसके जाएं तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, और नीचे उसके नरक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि आप क्या करो, निर्माण करो। 84 लाख योनियों का निर्माण कल मैंने आपको बताया था ना, तो निर्माण के लिए ब्रह्मा जी को क्या चाहिए था, इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए होंगे ना, ब्रह्मा जी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को इंग्रेडिएंट्स दे दिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिए, उन्होंने 24 तत्व ब्रह्मा जी को दिए, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पेट, जिह्वा, लिंग तथा गुदा, 5 इंद्रियों के विषय, रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श, और उसके बाद उन्होंने दिया मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके साथ साथ 3 गुण। गुणों को एक ही काउंट करते हैं, 3 होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन इनको एक ही काउंट करते हैं। ये 24 तत्व ब्रह्मा जी को दिए भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि उत्पन्न करनी थी तब अभी उसके पास इंग्रेडिएंट्स भगवान ने दे दिए, बोला इनसे आप सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जितने भी कल हमने 84 लाख योनियां बोली थी ना, उन सबको उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने उन सबको उत्पन्न कर लिया, बना लिया ब्रह्मा जी ने अपने भगवान की शक्ति से। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा मूव तो कर ही नहीं रहे, मैंने सबको बना दिया है लेकिन मूवमेंट किसी के अंदर नहीं है। तो भगवान को जाके बोला कि भगवान मैंने सब बना दिए, जो आपने बोले थे ना, आपने जो इंग्रीडियंट्स दी थी उनके अनुसार मैंने सारे जीव बना दिए लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा मूव नहीं कर रहे हैं तो तुम ऐसा करो, ये आत्मा लो। तो भगवान ने आत्मा का एक अंश जो है, आत्मा क्या होती है वो तो मैं आपको बता दिया ना, बालाग्रेसर भगवान का ही अंश होती है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा जितने भी जीव बना है ना उनके अंदर आत्मा फिट कर दो, तो वो मूव करेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, आत्मा का अंश जो भगवान ने उनको प्रोवाइड किया था वो सारे जीवों में डाल दिया। लेकिन हैरत की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सबके अंदर आत्मा भी डाल दी तो भी वो मूव नहीं कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी वापस भगवान के पास गए और बोला आपके कहने के अनुसार मैंने समस्त प्राणियों में आत्मा को फिट कर दिया है, मगर फिर भी वो मूव नहीं कर रहे हैं, चलायमान नहीं हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा, फिर जब अगर हमारे वर्कर से काम सीधा नहीं होता है तो जो बड़ा इंजीनियर होता है वो बोलता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। तो भगवान जी ने कहा कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं आपकी, आपने जो सृष्टि का उत्पन्न किया है वो क्यों नहीं बन रहे। तो भगवान भी ब्रह्मा जी के साथ गए और ब्रह्मा जी, वाकई ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों का निर्माण कर लिया था, आत्मा डाल दी थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे थे, वो चल नहीं रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान ने अपना परमात्मा रूपी अंश, अपना ही एक अंश परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों में डाल दिया। जितने भी प्राणी थे जो ब्रह्मा जी ने बताए थे परमात्मा रूप में स्वयं सबके हृदय में प्रकट हो गए। अब ऐसा नहीं है, अब परमात्मा को थोड़ा क्लियर करें, ऐसा नहीं है कि भगवान का जो भगवान का शरीर था उसमें से एक एक टुकड़ा करके डाल दिया गया हर एक में, ऐसा नहीं है। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे जितने भी 84 लाख योनियां थी ना उनको आप कटोरे की तरह, जैसे एक बाउल में आप पानी डाल के रखो, धूप में रखते हैं तो क्या होता है उसमें हर एक में सूर्य का प्रकाश इज इट इज नजर आता है, एक सूरज बना हुआ नजर आता है ना जब धूप में, तो वो सूरज अलग अलग नहीं होता है, सूरज की खंडन नहीं हो रहा है, सूरज के पीस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हर जीव के अंदर, हर जो कटोरी है उसके अंदर वो अंश नजर आ रहा होता है। तो परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो स्वयं जो है वो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, लेकिन जिस तरह सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो छवि है वो उसके अंदर हो रही होती है हर कटोरी के अंदर, तो उसी तरह से भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर फिट कर दिए गए। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अब वो परमात्मा अंदर फिट गए। इनको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। अब हमारे पास तीन विष्णु हो गए, एक कौन से कारण दक्षाय विष्णु जो सांस ले रहे थे, एक दूसरे क्षीरो दक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते थे और 14 लोकों का निर्माण जिनकी नाव से होता था, और उसके बाद है गर्भो दक्षाय विष्णु जो प्रत्येक जीव के अंतर्यामी है, हर जीव के अंदर चाहे वो कोई भी 84 लाख योनियां जितनी भी हैं उनके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है सबके अंदर भगवान जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं उनको कहते हैं गर्भो दक्षाय विष्णु। अब इनका क्या काम है, वास्तव में ये साक्षात भगवान नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान वो है जो आपके हृदय में विराजमान है, बस उसी परमात्मा की पूजा करनी है, वो तो हमारे हृदय में है। वास्तव में ये भगवान का एक अंश है, बस भगवान तो स्वयं, अब जैसे मैं आपको बताया मिसाल दी कि कटोरे के अंदर जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो सूर्य तो नहीं हो सकता, सूर्य का एक अलग अस्तित्व है जो ऊपर आकाश पे नजर आ रहा है, उसी तरह भगवान का एक अलग अस्तित्व है। जहाँ से हमने शुरू किया था ना गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पर भगवान स्वयं रहते हैं, लेकिन वो अपना एक प्रकाश हर जीव आत्मा के हृदय में डालते हैं जिसको परमात्मा कहते हैं, उनका अंश होता है वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। तो परमात्मा और भगवान के अंदर जो फर्क है उसको हमें हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है। अब उनका काम क्या होता है वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 13.23 श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 23 में भगवान कहते हैं उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उसके दो काम होते हैं, एक तो उपदृष्टा होते हैं, उपदृष्टा मतलब साक्षी, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी काम कर रहे हो, इवन आप सोच रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसको देख रहे हैं, वो अंदर बैठ के देखते हैं। प्लस आपके कर्म में आपकी सहायता कर रहे हैं। आप उनका काम ही ये है, भगवान ने उनको ड्यूटी ये दी हुई है कि मेरे बच्चे उसके हृदय में मैंने आपको स्थापित किया है अपने अंश को, अब जो भी मेरा बच्चा चाहेगा आप उसको उसके हर आज्ञा का पालन करने में उसकी सहायता करना, जो जो मेरे बच्चे की इच्छा होगी उसकी हर आज्ञा का उसकी हर इच्छा के अनुसार आप उसकी है ना सहायता करना। अगर कोई मेरे पास आना चाहेगा तो आप उसको मेरे पास लेकर आना, अगर वो इस संसार में भटकना चाहेगा तो आप आपको कोई भी है ना ये डिसीजन नहीं लेना है, मतलब ये डिसीजन आपको नहीं लेना है कि मैं ये करूं या ना करूं, बस जो भी वो जीव जिसके अंदर आप हो, जीवात्मा के पास जिसके भी हो, उसकी जो भी इच्छा है वो आपको पूरी करनी है। भगवान ने उसका ये ड्यूटी रखी है। अब इस परमात्मा की ये ड्यूटी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमें क्यों नहीं मना करते हैं कि ये काम करो ये नहीं करो, हमें अपराध करने से क्यों, उसकी ये ड्यूटी ही नहीं है। भगवान जो आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं ना, उसका काम खाली ये है कि आपके कर्म में आपकी सहायता करना। उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, उनका कार्य क्या है, आपकी इच्छा को पूरी करने में आपकी सहायता करना। बस आप भगवान ने आपको गुरु दिया, शास्त्र दिए, अकल दी, बुद्धि दी, सही और गलत का निर्णय करने के लिए आपको पूरा कॉन्शियस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचते हो कि भगवान, और प्लस भगवान ने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं परमात्मा के रूप में आपकी सहायता करूंगा, लेकिन फिर भी इतने मतलब कमजोर हैं हम बोलते हैं कि भगवान क्यों नहीं मुझे मना करता। तो भगवान आपको अगर सिनेमा जाने से मना नहीं कर रहा है तो भगवान आपको मंदिर में जाने से भी मना नहीं कर रहा है। चॉइस तो आपकी है, ये तो करुणा है मेरे कृष्ण की। ये तो भगवान कितने कितने ज्यादा उदार हैं कि हर जीव आत्मा की खुशियों को, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार आप कार्य करो। तो ये परमात्मा जो है वो हृदय में बैठा हुआ है, उसका काम खाली ये है कि वॉच आउट करना, आपकी सीडी बनाना, एक पूरा सीडी बना देते हैं, ऊपर जाएंगे ना जब यमुनाथ के रामराज के पास, फिर वो सीडी चालू करके दिखा देंगे कि देखो इसने ये किया। उसका कार्य ये है, हर किसी का कोई ना कोई कार्य बताती जा रही हूँ ना मैं, गणपति का, दुर्गा मैया का, और तो ये परमात्मा का कार्य ये है। ये भगवान का ही अंश है, लेकिन उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको वॉश आउट करना और आपको सहायता करना। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको भगवान और परमात्मा के बीच में डिफरेंस भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ है वो भगवान ही है। अब भगवान और परमात्मा में, शायद मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया, लेकिन लेक्चर फर्स्ट ग्रुप है सेकंड ग्रुप है तो मिक्सअप हो जाते, लेकिन फिर भी एक बार फिर से सुन लो अगर सुन लिया है तो भी। परमात्मा और भगवान के अंदर क्या डिफरेंस है? परमात्मा जब आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है, यानी वही भगवान है, लेकिन जब वो आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है तो उसका कार्य क्या है? वॉच आउट करना, आपको देखना और आपके काले करतूतों को नोट करना, ये काम है उसका। लेकिन वही परमात्मा जब भगवान के रूप में अपने गोलोक वृंदावन धाम में है तो वो आपका क्या लगता है, मतलब उसका क्या काम है? उसका काम भगवान श्री कृष्ण 18.66 में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम क्षणो वजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। मैं तुम्हारा बाप हूँ, भगवान कहते हैं 9.17 में, पिताहमस्य जगतो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर दूंगा। अब ये इन दोनों में डिफरेंस है। देखो, परमात्मा का काम ये है कि आपको वॉच आउट कर रहा है, सिर्फ आपको देख रहा है और आपको आपके करतूतों को लिख रहा है, वहां पर जाके सजा दिलानी है, ये प्लानिंग है उस परमात्मा की। और भगवान की क्या प्लानिंग है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये इसी तरह इन दोनों में डिफरेंस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से देती हूँ कि देखिए, एक किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा अपराध हो जाए, किसी भी मनुष्य से बहुत बड़ा अपराध हो जाए, और उसका जो बाप है वो जज है। जज मतलब कब है? जब वो अदालत में है, यानी जब वो अदालत में है तो जज है, लेकिन जब वो घर में है तो बाप है। अदालत में है तो सिर्फ वो जज का कार्य करेगा, वो आपको क्षमा, अगर सबूत आपके खिलाफ है, सारे जितने भी विटनेस हैं, जितने भी गवाह हैं, वो सब आपके खिलाफ हैं, तो उस जज को ये अधिकार ही नहीं है कि वो आपको क्षमा दे। उसको एक ही अधिकार है कि वो आपके लिए यही फैसला लिखे, हैंग टिल डेथ, कि जब तक ये मरता नहीं है तब तक इसको लटका दो, यानी कि फांसी ये बामुशक्कत कैद की सजा, उसके पास और कोई अधिकार ही नहीं है, भले वो कितना हृदय से चाहता भी हो, अगर उसके अंदर आपके लिए कितनी सहानुभूति भी हो, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो आप क्षमा कर सके, क्योंकि उसका कार्य क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको पनिश करने के लिए या फिर आपकी जितने भी आपने कर्म किए हैं उसकी सजा देने के लिए ही है। तो परमात्मा का काम क्या है, वॉच आउट करना, नोट करना और फिर वहां पर करना। और भगवान का काम क्या है, अभी वही बाप है जो पहले जज था ना अदालत में, वो जब घर में है तो आपका बाप है। बाप का मतलब ये है कि अगर उसका बेटा अपराधी है और बाप के पास जाता है कि पिताजी ने, और पूरे हृदय से अपने बाप से जो है वो क्षमा मांगता है, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दो, आपके पास अथॉरिटी है, आप कर सकते हो, आप मेरी सहायता करो, तो पिता जो है वो मैं भी के उसको माफ कर दे, है ना, उसके पास चांसेस हैं क्योंकि उसके पास अथॉरिटी भी है, वो कोई ना कोई वकील इंगेज करेगा, वो किसी ना किसी तरह से अगर चाहे तो अपने बच्चे को क्षमा कर सकता है। और अगर उसने पहले ही अनाउंस कर दिया हो और लिख, ऐसे नहीं होता है, जैसे अगर हम यहाँ संसार में कोई अपराध करते हैं और घर से भाग जाते हैं, मतलब घर से चले जाते हैं, तो हमारे पिताजी कैसे एक ना सारे जगहों पे न्यूज़ एक दे देते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, आप कहीं पर भी हो, मैं मानता हूँ आपसे अपराध हो गया, लेकिन आप अगर घर आ जाओगे तो मैं आपको क्षमा कर दूंगा। सारे जितने भी वो होते हैं ना पुलिस स्टेशन, सब में ये पर्चा लिखा भी लगकर ये मतलब खबर फैला दी जाती है कि अगर ये बच्चा वापस घर आ जाएगा तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा। तो भगवान ने भी स्टेटमेंट दिया है 18.66 में कि आपको मैं क्षमा कर दूंगा, आप आ जाओ, आओ तो सही, अपने घर पे आओ, मैं ऐलान करता हूँ, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि मैं आपको क्षमा करता हूँ। तो अगर बाप के पास जाएंगे तो क्षमा प्राप्त होना पॉसिबल है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन बाप भी होता है ना, वो भी अगर अपराध हद से ज्यादा बढ़ गए, और हमारे अपराधों की कोई काउंटलेस अपराध है, हर सांस से अपराध करते हैं, इतने जीवों को खाली सांस लेते लेते मार देते हैं, इतने जीवों को तो चलते चलते पैरों के नीचे कुचल देते हैं, खाने के टाइम पर अपराध करते हैं, पीने के टाइम पर अपराध करते हैं, सोचने के टाइम पर अपराध करते हैं, बोलने के टाइम पर अपराध करते हैं, अपराधों से घिरा हुआ हमारा ये जो जीवन है, ये तो एक जीवन है, बाकी तो पिछले तो करोड़ों करोड़ अपराध जो हम लोगों ने किए। अरे किसी ने पता है, यहाँ पर मैं आपको एक बात इससे थोड़ा हटके बता रही हूँ, किसी ने कहा एक क्वेश्चन के श्लोक प्रभुपाद से कि हमें याद भी नहीं होता है कि हमने अपराध किया है, भगवान उसकी भी हमें सजा देते हैं। यानी याद होना चाहिए ना, भगवान को हमें हमारे अपराधों को याद दिलाना चाहिए पहले, उसके बाद सजा देनी चाहिए, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं होता है हम अपराध भोग रहे, सजा भोग रहे होते हैं, पहले भगवान को बताना चाहिए ना कि ये अपराध की ये सजा है। तो श्री प्रभुपाद ने बोला, भगवान तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं सोच नहीं सकते तुम, अगर यहाँ संसार में हर अपराधी को ये अनाउंस कर दिया जाए कि इसकी इस जुर्म की इसको सजा दी जा रही है, तो तुम्हारे जुर्म इतने घिनौने हैं कि तुम उस अपराध के विषय में सुनकर ही खुदकुशी कर लो। यानी कि इतनी बेइज्जती मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सके, मनुष्य जीवन में भोग रहा है ना, तो मनुष्य वो बेइज्जती इतनी होगी उस अपराधों को। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे अपराध होंगे तो हम चाहेंगे कि हम जिनको जानते हैं उनको पता ना चले कि ये मेरा अपराध, लेकिन अगर भगवान ये अनाउंस कर दे कि इस नालायक ने ये कार्य किए हैं, तो क्या हम जी सकेंगे और इतनी ज्यादा बेइज्जती के साथ? तो भगवान की कृपा है, वो चुपके से किसी को बताते नहीं, बस चुपके से आपको अपराधों की सजा दे रहे हैं, ये तो कितनी करुणा है। अगर बता बता के देते कि ये दुख मैंने इसको इसलिए दिया है, ये दुख मैंने इसको दिया है, तो उन दुखों को झेलना इतना मुश्किल ना होता जितना कि अपनी बेइज्जती को झेलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान हम पर कितनी कृपा, कृष्ण की हर कार्य में कृपा को ढूंढने की कोशिश करो, वो केवल कृपा करना जानते हैं। हम ही ऐसे हैं कि उनकी कृपा को भी हमेशा ये पॉइंट आउट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भाई ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। हाँ, तो हमारा टॉपिक ये था कि भाई भगवान जो, अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो क्षमा पॉसिबल है कि हमें मिल जाए, लेकिन पिता का हृदय भी थोड़ा कठोर होता है, इसलिए यदि कोई अपराधी
अपनी माँ का आंचल पकड़ ले और कहे, मम्मी मुझसे गलती हो गई है, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं अगर पापा के पास डायरेक्ट से जाऊंगा तो मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मुझे मुझे पता है, बोला तो है उन्होंने, लेकिन मेरे अपराध इस लायक ही नहीं क्षमा करें। तो आप बोलो उसको, अगर आप पापा को बोलोगे तो मुझे क्षमा कर देंगे, आपकी बात वो नहीं टालेंगे। तो अगर हम इस भाव से माँ के पास जाएंगे तो माँ क्या कहेगी पता है? सदी खड़ी हार ब्याज न कर दो, मैंने अपने बाप को बताएगी कि अब मैं गारंटी देती हूँ कि वो नहीं करेगा, अभी इस बारी इसको छोड़ दो। तो इसी तरह से यही प्रोसेस दिया हमें श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आपको भगवान के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने गंदम वर्क्स आपने किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि भगवान ने भले ये अनाउंस कर लिया है, लेकिन तुम उसके हाथ लगे ना कि तो दो चार थप्पड़ तो पड़ेगी तुमको। इसलिए तुम पहले भगवान के पास जाओ, नहीं सीधा श्रीमती राधा रानी के पास जाओ और कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए पुरकशिश भगवान की आलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के पर मैं अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की तरफ आकर्षित करो और मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं आपके कृष्ण की सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। मुझे योग्यता अवसर और भगवान की सेवा करने के लिए आज्ञा प्रदान करो। और जब भगवान श्रीमती राधा रानी के पास हम इन भावों के साथ जाते हैं तो वो श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामय होती हैं, इतनी करुणा है उनके हृदय में कि उनको अपराध नजर आता ही नहीं है। मतलब किसी के अंदर अपराध नजर नहीं आता, सिर्फ ये भाव नजर आता है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और डायरेक्ट से अपना हाथ पकड़ के आपको कृष्ण के पास लेकर जाते हैं और यहाँ पर हमारे समस्त अपराध कृष्ण क्षमा कर देते हैं और अपने गौलोक वृंदावन धाम में हमें अपने पास ही बिठा लेते हैं। तो याद रखिएगा, परमात्मा के पास यदि जाएंगे तो पनिशमेंट के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा ने ये कहीं स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन भगवान ने कहा, परमात्मा ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ आप देख सकते हो भगवद गीता 9.17, भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगत हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ। और अगर आखिर में बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा, तो यदि जाना है तो भगवान के पास जाओ, क्योंकि अपराधों से भरे हुए हो, अपराधी व्यक्ति को कभी भी जज माफ नहीं करता। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गए वो गर्भो दक्षाय विष्णु जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनका कार्य समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान के जितने भी अवतार इस संसार में होते हैं, यानी भगवान को जब जब अवतार लेना होता है तो भगवान शिरो दक्षाय विष्णु से प्रकट होते हैं। जितने भी अवतार भगवान के होते हैं वो कहाँ से प्रकट हुए? शिरो दक्षाय विष्णु से। चाहे नरसिंह हो, वामन हो, विराह हो, राम हो, ये सब शिरो दक्षाय विष्णु से उत्पन्न हुए। और जो ये अवतार है वो भगवान के अंश और कला है, यानी कि ये भगवान पूर्ण भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान से प्रकट हुए ना। और इन सब अवतारों में भगवान अपनी कला और शक्ति प्रकट करते हैं। सब में देश काल प्रस्थिति, यानी जिस जिस कार्य के लिए वो आते हैं उस हिसाब से उनके अंदर शक्ति भगवान अपनी देते हैं। परंतु जो पूर्ण कला है किसी के अंदर है ना, जैसे टोटल कितनी कला है भगवान श्री कृष्ण की? 64 कला है जो भगवान के अंदर है, लेकिन किसी के अंदर 20, किसी के अंदर 30, किसी के अंदर 50, किसी के अंदर 40, यानी कि उस हिसाब से भगवान कलाएं प्रकट करते हैं, उस शक्ति प्रदान करते हैं उसको। लेकिन पूर्ण कला जो है वो भगवान ने अपने अवतारों में नहीं रखी है, अपितु अपने ही स्वरूप में प्रकट की है। जैसे 16 कला कहा जाता है, यानी टोटल 16 कला जो है, सॉरी 16 कला नहीं 64 कला जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। बाकी सब अवतारों में अलग अलग कलाएं होती हैं, लेकिन वो पूर्ण कला यानी 64 कला युक्त जो भगवान है वो स्वयं भगवान है, वो भगवान का अवतार नहीं है। देखो अवतार और अवतारी में फर्क मैं बताऊं आपको। अवतार मतलब जिसमें से प्रकट हुए हैं, जिसने ऊपर से मतलब किसी ने आपको भेजा हो, कोई और है जिसमें से प्रकट हुए। और अवतारी मतलब स्वयं जिसमें से प्रकट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो भगवान और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर तत्व से देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हैं,
ब्रह्म संहिता में दीपाचिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर और आसान दृष्टांत देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 24 मोमबत्तियां हों, एक साथ जल रही हों, मतलब एक उन 24 मोमबत्तियां बगैर जले ऐसे रखी हों, ठीक है। सारी मोमबत्तियां अगर बुझी हुई हैं, सिर्फ एक मोमबत्ती पहले से जल रही है, ठीक है, और उस मोमबत्ती में से सब मोमबत्तियों को जला जाए। 24 अवतार भगवान के मुख्य कहे जाते हैं ना, तो इसीलिए उनको ये इस तरह से एग्जाम्पल दिया कि 24 मोमबत्तियां रखी हैं, उसमें से एक जल रही है, और उस जलती हुई मोमबत्ती से बाकी 23 जला दी, और वो जो पहले जल रही थी वो सेंटर में रख दी। अब देखा जाए तो उनमें कोई भी अंतर नहीं होगा, सारी मोमबत्तियां एक जैसी थी, लेकिन परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो बाकी जो 23 मोमबत्तियां हैं वो एक मोमबत्ती के कारण जल रही हैं जो पहले जल रही थी। वैसे ही भगवान और भगवान के अवतार में कोई फर्क नहीं है, परंतु बाकी सारे अवतार कृष्ण से प्रकट होते हैं, कृष्ण के अंश यानी विष्णु से प्रकट होते हैं, बस इतना। लेकिन कृष्ण स्वयं किसी से प्रकट नहीं हो रहे हैं, कृष्ण स्वयं साक्षात अवतारी हैं। इस प्रकार भगवान के अनेकों अवतार हैं। शास्त्र कहता है कोटि न मुख कही जाए, करोड़ों करोड़ों मुख भी अगर मिल जाए तो भी भगवान के अवतारों का वर्णन नहीं कर सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का नाम अनंत है, भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के अवतार अनंत हैं, परंतु भगवान कृष्ण के 24 अवतारों को मुख्य माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय स्कंध में इन 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, और उसके बाद जब ये वर्णन करने के बाद और वेद व्यास जी इस भागवतम में एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने जितने अवतार मैंने आपको बताए हैं वो सब भगवान के अवतार हैं, वो अंश और कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण साक्षात भगवान हैं। अब उन कृष्ण के विषय में एक और हकीकत, एक और सत्य का आज मैं उद्घाटन करना चाहती हूँ, जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। क्यों? क्योंकि वास्तव में श्रीमद् भागवतम में 100 करोड़ श्लोक हैं, और वास्तव में भगवान नारायण ने इन श्लोकों का निर्माण किया है, और वेद व्यास ने इनको संक्षिप्त में करके 18,000 श्लोक दिए। क्योंकि इतना बड़ा अगर भागवत होता, 100 करोड़ श्लोक होते, तो हमें समझ में भी नहीं आते, हम उसको पढ़ते भी नहीं, इतना ज्यादा बड़ा शास्त्र होता। तो क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि हमारी इतनी उम्र नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो उन्होंने बहुत उसमें शॉर्ट किया। अब श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के पास इतना समय, इतना ज्यादा समय भी नहीं था कि वो, क्योंकि 7 दिन में उनको ये शास्त्र कंप्लीट करना था, उनके पास जो परीक्षक थे उनके पास समय ही 7 दिन था। अब इस जो तत्व अभी हम पढ़ने वाले हैं उनको श्रीमद् भागवतम में इतना ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली, मतलब विस्तार से नहीं बताया, संक्षिप्त में बताया गया, लेकिन जीव गोस्वामी ने अपने शास्त्र गोपाल चंपू और कवि करणपुर ने अपने शास्त्र आनंद वृंदावन चंपू में इस तत्व को बहुत बहुत क्लियर किया है। वास्तव में आपको मैं बताऊं कि देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी, किसकी? विष्णु भगवान की तपस्या की थी, और विष्णु भगवान को क्या बोला था कि आप, हम चाहते हैं कि आप जैसा पुत्र उत्पन्न हो। अब विष्णु भगवान की तपस्या की थी तो विष्णु भगवान ने क्या कहा, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं ही आपके घर में से अवतार दूंगा, यानी कि मैं ही आपका बेटा बनूंगा। अब इनको प्रॉमिस किसने किया है? विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान कृष्ण के अंश है लेकिन कृष्ण नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि उसी समय जिस टाइम पर देवकी और देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, वो विष्णु तत्व थे, और उसी समय माता यशोदा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था, उसी टाइम पर माता यशोदा के गर्भ से भी एक पुत्र का उत्पन्न हुआ था, एक पुत्री महामाया उत्पन्न हुई थी, और इसके साथ साथ एक पुत्र का भी जन्म हुआ था, वो साक्षात कृष्ण थे। अब साक्षात कृष्ण है तो कुछ भी कर सकते हैं। साक्षात कृष्ण वास्तव में देवकी के घर से जन्मे थे, देवकी के यहाँ तो विष्णु ने जन्म लिया था, यानी कि उन्होंने तपस्या भी विष्णु की थी, तो विष्णु ने ही जन्म लिया था। इसीलिए तो जब जैसे ही जन्म हुआ
शंख चक्र गदा परम पीताम्बर कौस्तुभ मणि लेकर खड़े हो गए, उसी रूप में आए थे ना। सब लोग का ये सवाल होता है कि अगर कृष्ण अवतारी हैं तो ये विष्णु क्या है, विष्णु अगर फिर तो मेन तो वही हुए क्योंकि पहले वो शंख चक्र गदा पदम लेकर ही उत्पन्न होते हैं, चाहे वो श्री राम के दिन जब श्री राम के यहाँ पर जन्म होता है तभी भी शंख चक्र गदा पदम, और जब देवकी और वासुदेव के गर्भ से जन्म होता है तभी भी। तो वास्तव में ये विष्णु तत्व है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, इस बात को हमें क्लियर करना। देखो मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बताती हूँ, जो शास्त्रों ने और आचार्यों से सुना है वही बताती हूँ मैं आपको, इसको हमें समझना है और एज इट इज ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्यों आए थे वो वहां पर, तो इसका तत्व आपको बताऊं कि पूर्व जन्म में जैसे मैंने आपको बताया कि देवकी और वासुदेव अदिति और कश्यप थे, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की थी और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे तो उनसे कहा था कि जैसा पुत्र आप, जैसे आप हो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। इसके पहले जन्म में, अभी इस जन्म में वो क्या थे, अदिति और कश्यप थे, और इससे पहले पृष्णी और शत्रुपा थे, उन्होंने भी भगवान विष्णु की आराधना की थी कि उनके जैसा पुत्र प्राप्त हो। वास्तव में इन दोनों जन्मों को देखकर पता चलता है कि वहां पर भगवान विष्णु ही आए थे, मथुरा में जो उत्पन्न हुए थे वो विष्णु तत्व का जन्म हुआ था, और गोकुल में जो उत्पन्न हुए थे वो कौन थे, ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब वासुदेव जी जब यहाँ पर आए विष्णु तत्व को लेकर, यानी कि जब विष्णु तत्व का जन्म हो गया था और उन्होंने ये बोला था कि मुझे गोकुल में लेकर चलो, तो जब वो वहां पर आए यशोदा मैया के पास पहुंचे तो वहां पर दो का जन्म हुआ था। क्लियर दिस स्टेटमेंट, दो थे, एक कृष्ण थे और एक योग माया, लेकिन वसुदेव जी को कृष्ण नहीं दिखाई दिए, भगवान अपनी योग माया के द्वारा छिप गए थे, उनको दिखाई नहीं दिए। फिर जैसे ही वासुदेव ने अपने विष्णु तत्व के बालक को रखा योग माया, और योग माया को साथ ले गए, वहां पर विष्णु तत्व के बालक को रख दिया था, जो उनका पुत्र था वो वहीं पर रखा, योग माया को ले गए, और यहाँ क्या हुआ, विष्णु और वजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण दोनों एक हो गए, मिल गए आपस में। ये सारी बात चैतन्य चरिता अमृत कृष्ण में कृष्णदास कविराज महाराज ने बहुत ही क्लियर करके लिखा है। वो वहां पर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आज तक किसी को नहीं मारे। शास्त्र का स्टेटमेंट है, शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी की हत्या करते ही नहीं है। जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण साक्षात दौलत वृंदावन धाम में रहते हैं, उनका एक ही कार्य है, केवल और केवल प्रेम करना, उनको हत्या करना आता ही नहीं है। अब इस बात को कैसे प्रूव करें, हो तो जन्म से ही मारने लगे, पूतना, पहले 6 दिन के थे पूतना, फिर अगासुर, बकासुर, उद्गज, ये वेद का स्टेटमेंट है कि कृष्ण ने आज तक किसी को नहीं मारा। वास्तव में कृष्ण का काम ही नहीं है मारना, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मात्र प्रेम करना जानते हैं। अब मारने का काम किसने किया, वो विष्णु तत्व ने किया, उन्हीं विष्णु तत्व ने सबका वध किया। और शास्त्र की एक और युक्ति है, शास्त्र क्या कहता है, वृंदावने परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, यानी वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते, वो सदैव वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है। तो कोई प्रश्न ये कर सकता है कि वो तो मथुरा चले गए थे। अब देखिए, ये दोनों एक साथ में हैं, कौन, विष्णु तत्व और कृष्णा। अब जब अक्रूर जी लेने आए, रथ पर सवार होकर जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा, चाचा जी मुझे यमुना में अंतिम बार स्नान करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना में उतरे, तो जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण थे वो यमुना में ही रह गए, और जो मथुरा गए वो कौन थे, विष्णु तत्व, यानी मथुरा से कृष्ण जो असली कृष्ण थे वो तो यमुना में ही रह गए। और ये भी बात भागवत में बता दी जाती है, जब कृष्ण के बाद अक्रूर जी स्नान कर रहे थे तो उन्हें अंदर भी कृष्ण नजर आ रहे थे और बाहर भी कृष्ण दिख रहे थे। यहाँ पर प्रूफ हुआ और कि मथुरा के कृष्ण मथुरा में चले गए, जो पहले मथुरा से वासुदेव जी लेकर आए थे वो मथुरा में चले गए, और वृंदावन के जो कृष्ण थे वो वृंदावन में ही रह गए, क्योंकि वो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न को मैं क्लियर करके
वाइंड अप करना चाहूंगी कि अगर वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही थे तो उन्होंने इतने सारे टाइम, इतना 100 साल तक कभी अपना दर्शन क्यों नहीं दिया गोपियों के विरह को, श्रीमती राधा रानी को, यशोदा मैया सबको, कॉल कितना प्यार करते थे कृष्ण से, फिर भी कभी उनके सामने नहीं आए, कभी उनको बताया नहीं कि मैं किधर नहीं गया हूँ, वो रोने क्यों दिया, इतना उनको दुख क्यों बर्दाश्त करने दिया। देखिए भगवान चाहते तो गोपियों के साथ रहते, परंतु भगवान ने विरह को क्यों स्वीकार किया, क्योंकि विरह में भी एक आनंद है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान गौलोक वृंदावन धाम में कुछ ऐसे आस्वादन है, कुछ ऐसे आनंद है जिनका वो आस्वादन नहीं कर सकते, उनकी लालसा रह जाती है हृदय में, तो उन्हीं आनंद को प्राप्त करने के लिए वो संसार में आते हैं और इसी प्रवक्या भाव, इसी विप्र लंबा रस का आस्वादन करने के लिए तो भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये जो भाव है, ये भगवान के जो इतने गूढ़ गूढ़ रहस्य होते हैं, जो गूढ़ तत्व होते हैं, वो केवल शुद्ध भक्तों के संग में बैठ कर ही पता चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।